अच्छा, अब ये तुमने जनरल बात की ना, यहूद के उलमा की सबसे बड़ी खयानत क्या थी आपको पता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें जिन आयतों में दी गई थी ना तौरात में, वो सारी बदल दी, चेंज कर दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, यहूद के उलमा ने तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत देखी, यानी आप नबी सल्लम की पूरी सिफात लिखी हुई थी। सुरमगी आंखें, यानी सुरमा लगी हुई आंखें, औसत कद यानी मीडियम हाइट थी आपकी, मुड़े हुए बाल और खूबसूरत चेहरा, लेकिन उन्होंने हसद की वजह से बदल दिया अपनी किताब में कि उस नबी का दराज कद होगा, जर्द रंगत होगी और सीधे बाल होंगे। ये आज भी कहीं आपको मिल सकती है अगर आप वहाँ पढ़ लें। ये नबी सल्लम के दौर की तौरात में भी ये बात बदल चुके थे, और इब्ने अब्बास का कॉल है। ये कहते हैं ये क्यों बदला, ताकि जब लोग नबी सल्लम के बारे में सुनेंगे तो सोचेंगे ना कि चलो आए अपनी किताब में देखें कि वो नबी जिसकी सिफात हैं वो क्या थी, तो वो देखेंगे, अरे अच्छा लंबा कद नहीं, इनका तो मीडियम कद है, अच्छा जर्द रंगत नहीं, इनका चेहरा तो बड़ा खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी है, और सीधे बाल नहीं, इनके तो मुड़े हुए हैं, नहीं, ये नहीं होगा। ये होता है मिस इंटरप्रेट करना, और लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं लोग। सही बुखारी की एक और रिवायत है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तुम्हें अहले किताब से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की ताज़ा किताब तुम्हारे हाथों में है। आज भी लोग कह सकते हैं ना, चलें भाई तौरात भी तो अल्लाह की किताब थी, हम ज़रा उसमें से भी कुछ टैली करें, का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, खाने में अगर जहर का शक हो तो हम ये तो नहीं कहते कि मैं चुन चुन के ठीक चीज़ खा लूँगी, सारे ही फेंकते हैं ना। अब ये नहीं मतलब कि सारी किताब ख़राब है। आज भी जो बाइबल है उसमें मे बी 50% से ज़ायद बिल्कुल अल्लाह की तरफ से हो, लेकिन बाकी 50 को क्या करेंगे? जिस किताब में एक नुक्ता ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, वहाँ अगर 50% कमी बेशी हो गई, हम जैसों के इल्म का तो हाल हमें बताइए, तो कैसे उसमें से चेक करेंगे कि ये ठीक है कि गलत है? कि अल्लाह ने तो अहले किताब को जो किताब दी उसमें उन्होंने तब्दीली कर ली, और अपने हाथों की लिखी हुई बातों को अल्लाह की तरफ निस्बत देकर फैलाया, तो फिर तुम इतनी महफूज किताब को छोड़कर इनकी तब्दील शुदा किताब को क्यों लेते हो? और देखो, वो तुम्हें नहीं पूछते, और तुम फिर उनसे क्यों उनके दीन की बातें पूछते हो? ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। तो लिहाजा उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। नतीजा क्या हुआ कि ऐसी बातें आम हो गईं, लोगों ने वो बातें आम कर दी कि जिसको अगर आप देखें तो गलत हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि इनके अंदर क्या ख्यालात पैदा हो गए थे, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि जब खुशफहमियाँ हुई ना दीन में शामिल, तो उसका नतीजा क्या निकला? अमल से दूरी, अभी हमने देख लिया, सस्ती सस्ती चीज़ों को लेने लगे, और उसकी जगह खुशफहमियाँ आ गईं। खुशफहमियाँ क्या थी? वह कालू, और वो कहने लगे, लन तमस्सनन नार, हरगिज़ नहीं छुएगी हमको आग। पहला दावा, हम नहीं आग में जाएंगे, तौबा तौबा, हम तो मुसलमान हैं, आग में तो जाएंगे काफिर। और अगर कभी कोई बात सामने आ जाती थी तो कहते थे, अच्छा इल्ला अय्याम मादूदा, अगर गए भी ना बिल फर्ज़ मुहाल किसी वजह से गए, और वो वजूहात लिखते थे कि चूँकि हमने बछड़े को पूछ लिया था, यानी मोटी मोटी दो चार खराबियां उनको अपनी दिखती हैं। ये भी निफाक होता है कि बंदे को अपनी बुराइयां ना दिखें, मुनाफ़क़त ना दिखें। कहते थे अगर गए भी तो अय्यामम मादूदात, किने में दिन जाएंगे। कैसे? यहूद के एक फ़िरके का ख्याल था कि दुनिया की कुल उम्र 70,000 साल है, तो हर 1,000 साल के बदले हम एक दिन, तो गोया के 7 दिन आग में जाएंगे। कुछ कहते थे हफ्ते के हर दिन के बदले एक दिन, यानी सारे जुम्मों के बदले एक जुमा, सारे हफ्तों के दिन एक हफ्ता, सारे पीर के दिन एक पीर, गोया के 7 दिन हम आग में जाएंगे। इसी तरह कुछ कहते थे कि हमने 40 दिन बछड़े की पूजा की थी, मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में, कि वाक्य पीछे गुजर चुका, तो बस हम 40 दिन तक आग में चलेंगे। अल्लाह ताला करें, अच्छा अच्छी खबर दी हमें भी। कुल अत्तखज़्तुम मिनल्लाहि अहदा, कह दीजिए क्या तुमने इसका अल्लाह से अहद ले लिया, यानी अल्लाह ताला ने कहीं यह अहद तुम्हारे साथ कर लिया? तौरात में कहीं लिखा हुआ है, कहीं इंजील में, किसी सहीफे में ये बात लिखी है कि तुम थोड़े दिन लोगे, गोया कि दलील मांगी जा रही है। और नहीं, ऑफ कोर्स कुछ नहीं जवाब दिया क्योंकि है ही नहीं था। तो कहा फिर मान जाओ क्या, अम तकुलून अलल्लाही मा ला तालमून, तुम अल्लाह पर वो बात कह रहे हो जो तुम खुद भी नहीं जानते, अपनी मर्जी की बातें करते हो। ये है ना अतखज़तु मिनदल्लाह अहदा, आपको लग रहा है ना कि सवाल पूछा है। इसको अरबी जुबान में कहते हैं इस्तिफहाम। फहम से सोचिए, इस्तिफहाम मतलब सवाल करना बराए इनकार। ये ऐसे ही है जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि ये लेके आना, अब आपने सवाल किया है ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने उसको नहीं कहा था। ठीक है, तो अरबी जुबान में याम है, यानी अल्लाह ताला इनकार कर रहे हैं इस बात का कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और तुम अपनी मर्जी से अल्लाह ताला के ज़िम्मे मुख्तलिफ बातें करते हो। यहाँ पे आप देखिए कि ये सारी बात जो है इसको अगर इकट्ठा कर लें तो आज उम्मत मुस्लिमा में भी ऐसी कुछ अटकलें हैं, फलां दरवाजे से गुजर जाओ तो तुम बहिश्ती हो जाओगे। है सी बात, मरने वाले का कफन जमजम के पानी में भिगो लो तो बस अजाबे कब्र नहीं होगा। आज हमारे यहाँ कौन कौन सी झूठी कहानियाँ मारूफ हैं और जिसको लोग इतने शौक से पढ़ते हैं कि ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा तो कोई और ऑथेंटिक चीज़ ही नहीं। जिन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि चूंकि हम मुसलमान पैदा हुए तो हम कुछ देर के लिए जहन्नुम में चले जाएंगे और फिर जन्नत में पहुंच जाएंगे। अगर ये बात उनकी सच भी है ना, तो उन्हें कहें कि स्टोव जलाएं, ओवन जलाएं और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी उंगली की पोर स्टोव पे रखें, और ये आग जहन्नुम की आग का 69th हिस्सा है। टोटल 70 पार्ट्स किए जाएं तो उसका एक हिस्सा है और 69 हिस्से आगे पड़े हैं। बर्दाश्त कर सकता कोई? कितने प्यार से कह देते हैं थोड़ी सी आग लगेगी बस मुझे, फिर मैं खुश हो जाऊंगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात इंसान कह देते हैं। जी आप जी सही, यानी मुर्दे के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई चादर डाल देना, और बास लोग तो कलमा लिखा हुआ डालते हैं, आप कहेंगे कि इस वाकई फ़ायदा तो होगा। देखिए कलमा कहाँ से निकलता है, दिल से निकलता है। ये जो बात इन्होंने की ना कलमे की चादर, मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक जो है ना वो बड़ा बाबरकत था, कि जिसने बराह रास्त उस सीने को टच किया था कि जिसके अंदर कुरान था। कलमे की गहराइयाँ रूह उन्होंने पूरी की हुई थी, और अब्दुल्ला बिन उबई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफन है। पीछे सुना चुकी हूँ आपको गालिबन, या आगे कहीं सुना दूंगी। तो इसके बावजूद उसका अंजाम जो लिखा हुआ है वो आपको पता है। फिर रहेगी बात जमजम के पानी में कफन को डिबोना, पानी तो खुश्क हो गया। आप देखिए जितना जमजम अबू जाहल ने पिया होगा, आपने और मैंने पिया होगा, वो तो पला बड़ा ही वहीं, उसके दिल की जहालत नहीं दूर हुई, वो जमजम उसको काम नहीं देगा। अब कहाँ जाएंगे? मैं कहती हूँ कि ऐसे फिक्शन से बुक स्टोर के बुक स्टोर भरे हुए हैं। बसों के स्टॉप्स पे आप देखें जो किताबें बिकती हैं। हमारी आम आवाम का टेस्ट क्या है जी? दुआओं वाली किताब दे दें, वजीफ़ों वाली किताब दे दें, दुरूदों वाली किताब दे दें, ये पढ़ लें तो इतनी दफ़ा सवाब, ये पढ़ लें तो इतनी दफ़ा सवाब। और बस लोग वो दुरूद भी पढ़ रहे होते हैं जिसका उनको मैं शऊर से कह सकती हूँ तर्जमा नहीं आता। पढ़ रहे हैं इसलिए कि बस कहा लोगों ने पढ़ो तो पढ़ रहे हैं। और मैंने जिस तकलीफ़ दे अंदाज से लोगों को पढ़ते देखा है उस वक़्त, तो मेरे दिल में यही आता है कि अल्लाह ताला तू ही इन पे रहम कर दे कि बीच में बातें, बीच में खाना, नमाज के वक्त पे नमाज नहीं, नेल पॉलिश लगी हुई और बीच में गिनती भी हो रही है, और पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शुक्र है पूरा हो गया। ये क्या है? और कोई बात बताएं जो हमारे यहाँ मारूफ है। जी ये आपका सवाल अच्छा है। इन्होंने कहा कि मुर्दे के बारे में जो लोग कह देते हैं कि ये जन्नती है, पता है क्या चक्कर है? मुझे तो ऐसे लगता है हमारे यहाँ चेहरे को बड़ी अहमियत देते हैं। बच्चा पैदा होता है ना तो उसके चेहरे पे बड़ा प्यारा बच्चा है, खूबसूरत है। लड़की देखने जाएंगे, चेहरा कैसा है? खूबसूरत, दुल्हन बड़ी प्यारी लग रही थी है। इसी तरह बेचारा जो फौत हो जाता है ना, उसका भी कहते हैं चेहरे पे बड़ा नूर था। अच्छा, अब जिसका रंग गोरा था और स्किन आपको कहते खिंचती है मरने के बाद, जब स्किन खिंचती है, और हो सकता है उसका रंग गोरा था वो और चमकने लगे, लेकिन क्या इसके अंदर कि जिसका रंग काला था या कोई खुदा नास्ता जल के मर गया, या किसी की सडन डेथ हुई और बॉडी के सारे वेस्ट अभी अंदर थे, थोड़ी देर में शक्ल बदल जाती है, तो क्या ये बातें सारी उसके बुरे खात्मे की है? किसको खबर कि किसके साथ क्या हुआ? हाँ, कुछ अलामतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं मरने वाले की, कि जिसके साथ उसकी शहादत की मौत की या उसके ईमान की है, वो जहाँ आए कि आपको बताएंगे, लेकिन अपने पास से कुछ नहीं कहना, ठीक है जी? ये भी एक आपने बात कही, सुना मैंने भी इस बारे में, कि मैयत के पास बैठ के सूरत बकरा पढ़ते हैं 250 सुपारे, क्यों? ये राहदारी की है। ज़रा आप सोचें, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आपने 80 आयतें पढ़ी हैं सूरह बकरा की, आपको अफसोस हो रहा है कि आपने पिछली ज़िंदगी में क्यों नहीं पढ़ ली, समझ ली? किसको ज़रूरत है सूरह बकरा की? मरने के बाद के आज? तो जिसने मरने के बाद पढ़ी वो किसके लिए पढ़ी? मैं तो इस पे भी बड़ी हैरान होती हूँ, और मेरे शोहर ने शायद ये कल्चर कभी इतना देखा नहीं था। किसी जगह गए और किसी की डेथ हुई थी, तो अब मुझे आके कहने लगे कि मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी। मैंने कहा क्या देखा आपने? कहते कि जहाँ ये भी वैसे ही गए हुए थे, और मतलब वहाँ उनके किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ भी हुई थी, तो इन्होंने देखा कि मर्द हजरात आ रहे थे। कहते जो भी आता है ना, तो वो फ़ौरन आके जिनका रिश्तेदार फौत हुए थे उनको मिलते, फिर एकदम कहते चलो दुआ कर ले, दुआ कर ले, फिर सारे हाथ उठाते और सूरह फातिहा पढ़ते, और फिर कहते चलो अब उसको बख्श दिया, फिर हालात होते। कहते ये क्या है? मैंने कहा मैंने भी आपसे ही सुना है, लेकिन मैंने एक नाम सुना हुआ है कि फातिहा ख्वानी मरने वाले की, तो शायद इसी को कहते होंगे। मारूफ है ना लफ्ज़ मरने वाले की फातिहा? हाँ, अब आप बताइए कि सूरह फातिहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जिंदों को ज़रूरत है कि मरने वालों को ज़रूरत है? ज़िंदगी भर सारी किताब बंद, सारे रास्ते वो ये मखदूब और दुआलीन के, और मरने के बाद कहते हैं अल्लाह इसको हिदायत दे दे, वो तो पा चुका अपना मुकाम। जी आप उनको कहें कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में जो कोई फौत होता था तो आप क्या करते थे, आपका अमल था? पहली बात है कि इस तरह बैठना, फूड़ी डालना, चटाइयाँ बिछाना, ये तो मसनून ही नहीं है। सहाबा किराम कहते हैं कि हम बतौर ख़ास मिलना और मैयत वाले घर में आना इसको नौहा समझते थे। कोई ये रस्म नहीं है कि आप 3 दिन दुकानें बंद करें, काम ख़त्म करें और आके बैठे। अफसोस के दिन भी नहीं कह सकते, ताज़ियत के दिन है, सब्र की तलकीन करें। नबी सल्लम की बेटी का बच्चा फौत हो गया, तो आपने उनको कहला भेजा कि इन्ना लिल्लाहि मा खज़ा व लहू मा आता व कुल्ल शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। अल्लाह ही का था जो वो ले गया, और हर चीज़ जो हमारे पास है वो एक ख़ास वक्त तक के लिए, लिहाजा अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हो जाओ और उस सब्र करो और अजर की उम्मीद रखो। अब कितनों को ये दुआ आती है? हाँ, ताज़ियत की दुआ है, मसनून दुआ है, 2-3 लफ्ज़ों से है, एक ये भी है, एक और भी इससे मिलते जुलते हैं। हम में से किसी को नहीं आती, आप में से किसी को आती थी ये? अगर मैंने ये ना पढ़ी हो मुख्तलिफ मौक़ों पे जहाँ ऐसा होता है, तो मुझे कैसे याद होती ये दुआ? सोचे, ये एक दफ़ा पढ़ने से तो नहीं आती ना, कोई भी किसी का जाए यही दुआ पढ़ी उसको, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो पढ़ना ही होता है ना। बहुत है, मैयत मरने के लिए दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ीही वाफ़ू वक्रीम नुज़ुलहू, पूरी दुआ है, आपको भी आती होगी इंशाल्लाह ताला। दुआ करें। जिन्होंने ये बातें नहीं पढ़ी वो अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। एक खातून थी, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके हस्बैंड को अल्लाह ताला ने कुछ यानी थोड़ा समझ दी, इन्होंने भी कुरान पढ़ा, तो ये मरने के बाद जो सारी रसूमात होती हैं, तो कहती कि वो अपनी ज़िंदगी में इसके बहुत लोगों को ख़िलाफ़ थे कि तुम कुरान तो पढ़ते नहीं और मरने वालों के ख़िलाफ़ ये काम करते हो ना, तो ख़ुद भी बीमार हुए, करीब थे डेथ के। तो कहती हैं कि मैंने अपने मियाँ से कहा, पता नहीं उनका क्या नाम लेके, कहती मैंने कहा कि बात सुने, आप तो सारी ज़िंदगी दूसरों को कहते रहे हैं कि कुरान पढ़ो और मरने वालों पे क्या फ़ायदा, आप भी मुझे अपने बारे में बता जाएं कि मैं आपकी ये रस्में करूं, कराऊं कि ना करूं, यानी समझ गए होंगे आप खुलासा। तो कह रही नहीं पढ़ा देना, क्या पता है इस वक्त तो इतनी ज़रूरत है नेकियों की, करा देना मेरा भी ये काम। सोचे, वो गिरे नहीं खुलती जो बचपन से ख़ानदानों की पड़ी हुई हैं। ठीक है, और कोई मिसाल लाएँ ज़रा इससे हटके। देखिए, इनका सवाल ये है कि क्या ये कहना चाहिए कि फलां फौत हो गया और हम अफसोस के लिए जा रहे हैं? मैं तो एक ही जुमला कहती हूँ कि एक खाकी ज़र्रे को, एक इंसान को कहाँ हक पहुँचता है कि अल्लाह के फ़ैसलों पे अफसोस करे? हमारा तो हाल होना चाहिए रज़ी तो बिल्लाही रब्बन, अल्लाह तेरे फ़ैसलों पे राज़ी हो, ये ना कहें, ताज़ियत कह लें, सब्र की तलकीन करना या उसको इस पे लाना। ठीक है, आप देखिए बस सारे सवाल मैयत के बारे में ना करते जाएं। ये जो अमानी है ना, इसकी बहुत वसीह कहानी है, लेकिन आपने जवाब दिया तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, हम जाके खुद ही देख लें वहाँ से, कि जब भी कोई मामला पेश आए तो फौरन जाके नबी सल्लम की सीरत की किताब खोलें, और चेक करें कि आपका भी तो कोई फौत हुआ ही होगा ना, आपकी भी बीवियों का इंतकाल हुआ, बेटियों का इंतकाल हुआ, बेटे का हुआ, आपके नवासों का इंतकाल हुआ, चचाओं का इंतकाल हुआ, आपने भी तो कुछ तो किया होगा ना। आप कहते हैं नहीं किया, मौका नहीं मिला, तो जाइए फिर अल्लाह के नबी की वफ़ात वाला चैप्टर पढ़ लें कि उसके बाद फिर सहाबा ने क्या किया। आप अगला सवाल आप करेंगे कुल के बाद 40वें का, फिर आप करेंगे बरसी का, जाइए अल्लाह के नबी की वफ़ात के 3रे दिन क्या हुआ, आपके पहली जुमेरात को क्या हुआ, आपके बाद अबू बकर सिद्दीक जो इतना गमज़दा थे, उमर फ़ारूक जो अपने होश गुम कर गए थे, आखिर उन्होंने भी तो कोई देख चढ़ाई होगी ना कि आखिर ये कैसे हो सकता है इतने बड़े नबी को हम भूल जाएं। और जो ये मनाते हैं उनसे ही कह दें कि आप इसकी कोई रिवायत ले आएँ, तो खैर आप दूसरों से ना आम लोगों को ना ये काम दिया करें, बेचारे परेशान होंगे, ये तो इल्म वालों ने तसल्लियाँ दी हुई हैं झूठी, क्या और खाने खिलाओ। एक औरत की गवाही है, कहती हैं कि शौहर बीमार रहे, बहुत लंबी बीमारी में रहे, कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक छोटा सा 7 मरले का प्लॉट था। फिर उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, मौलवी साहब के पास गईं, कहने लगीं कि मेरे पास कुछ नहीं है अपने शौहर के लिए करने के लिए, सिर्फ एक ये प्लॉट है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो तुम चाहती हो तुम्हारा मुर्दा बख्शा जाए, कहती ये तो मैं चाहती हूँ, कहते बेचो इस प्लाट को और शौहर के 40वां करो और रिश्तेदारों को खाने खिलाओ, वरना उसकी लाश नहीं बख्शी जाएगी। और ज़्यादा होता भी है कि मस्जिद वालों को दे दो, वही लंगर का इंतज़ाम कर देंगे। और वो कहती है मेरा प्लॉट बिका और मैंने वो सारे से ख़ानदान की दावत की और फिर मेरे साथ ये जुल्म हुआ। आप ज़रा सुने तो सही, अल्लाह ताला कहते हैं कि ला ताकुलू अमवाल अन्नास बिल बातिल, लोगों के माल बातिल तरीके से ना खाओ। आप यतीमों के माल खाते हैं जिनके सर पे बाप नहीं रहा, आप साथ उनकी बातें करते हैं, किसी के बाप का इंतकाल हुआ, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो ये 15 साल पहले की बात है जब 1,000 भी बहुत बड़ा लगता था, अचानक सडन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उनका डेथ हुई और फिर बच्चे इतने होश वाले भी नहीं थे, मुनासिब उम्र के थे, और 10 दिन तक रिश्तेदार घर में ख़ानदान के रहे और जो भी यानी कि खाने पके, तो मैंने अपने कानों से ये बात सुनी हुई है। तो उन्होंने बताया कि इन 10 दिनों में घर में जो सिर्फ ग्रोसरी ब्रेड अंडे दूध आए ये 80,000 रुपये का आया, 15 साल पहले की बात है, और उस वक्त 80,000 ऐसे था, कम से कम आज लगा लें तो मेरा हाल है कि 8 लाख तो हो गई, सिर्फ घर के खाने का जो किचन का खर्चा था वो ये आया था। क्या ये हक है? मैंने उनकी बीवी जो इतनी सडन डेथ से गुजरी थी उनके लफ्ज़ मुझे याद है, वो कहती थी मेरा दिल करता है सब जाएं, मुझे अकेले छोड़ दें, मैं उनको सोचना चाहती हूँ, मैं अपने दिल को यकीन दिलाना चाहती हूँ वो यहाँ नहीं, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ये हर वक्त घर में मेला लगा हुआ है, एक लंगर उठ रहा है तो दूसरा जा रहा है, तो मैं थक गई हूँ। सिर्फ 10 दिन, जब भी कोई किताब देखे ना जिसमें नीचे फजाइल लिखे हों, अल्लाह के नामों पर जो कहानियाँ बनी होती हैं, इस लफ्ज़ को पढ़ें तो इतनी है, इस नाम को पढ़ लें तो ये सवाब, इसको पढ़ें तो फलां शोहर बीवी की मोहब्बत हो जाएगी, इसका वजीफ़ों की किताबें बेशुमार, लेकिन जो उसके नामों के असरात होते हैं या अल्लाह के नाम वो क्यों हैं, वो मुझे उर्दू की तो कोई ऐसी काबिल जिक्र किताब नहीं मिली कि जिससे मैं दूँ। तो चलिए बात वाज़े हो गई है ना, अल्लाह ताला से बस अपनी और लोगों की सबकी हिदायत की दुआ करें कि हम किस तरीके से इस दुनिया में रहते हैं और काम करना है। एक इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ने, उनकी दावा एकेडमी है, तो उन्होंने एक सर्वे कराया था पूरे पाकिस्तान की मस्जिदों का, और उसमें उन्होंने 1,20,000 मस्जिदों का सर्वे किया कि जो लोग वहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं उनके अपने इल्म का क्या हाल है, और उसकी रिपोर्ट क्या थी कि 80% 80% इमाम नमाज़ पढ़ाने वाले वो ख़ुद नमाज का तर्जमा भी नहीं जानते। और एक खातून हेडमिस्ट्रेस थी, ये बहुत पहले मैंने उनकी बात सुनी, तो वो कहती हैं कि मैं किसी गांव में गई हुई थी किसी टूर पे, जुमे का दिन आया तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ मस्जिद में, कहती जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ने गई तो मिंबर पे मौलवी साहब लोगों को जो कहानी सुना रहे थे उसका खुलासा क्या था कि क़यामत का दिन होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, अल्लाह को हुक्का पेश करेंगे और अपने उम्मतियों को कहेंगे कि हुक्के की नाली होती है ना वो अल्लाह को देंगे और लोगों को कहेंगे आंधे जाओ ते लंघते जाओ, यानी अल्लाह को मैंने नऊज़ुबिल्ला सुम्मा नऊज़ुबिल्ला मसरूफ़ रखा हुआ है, तुम आओ और इधर से निकलो और जन्नत में जाते जाओ। अब जो ये मीठी लोरियाँ सुनेंगे वो कुरान तो नहीं पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला हम पे और उन सब पे रहम करे, फरमाया कि ऐसी खुशफहमियाँ जो होती हैं फिर लोगों को दीन से इतना दूर कर देती हैं कि हम कुरान पढ़ें, कौन ज़कात दे, कौन अल्लाह के रास्ते में मेहनतें करे। और याद रखे लोगों को ऐसे उलमा बड़े पसंद होते हैं, आज भी लाखों के मजमूए उन दीन वालों के जो फैब्रिकेटेड रिवायतें ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे हदीसें कह लें या उसको क्या कहें कि इस तरह की पेश करते हैं कि जिसको सुन के लोग थाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, लेकिन उसकी सनद ज़यीफ़ होती है। आज के दौर का ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड है, अपने गिर्द भीड़ जमा कर लो, हमारे साथ कितने लोग हैं। नहीं, लोगों को नाराज़ नहीं करना, लोग ना कम हो, हक़ को गोलमोल पेश कर दो, अपना आप जाहिर ना करो। अकेले में, एक किसी की बात है, वो कहते हैं अकेले में नमाज़ पढ़ता हूँ तो रफुल यदैन करता हूँ, पब्लिक में आके पढ़ता हूँ तो नहीं करता, क्योंकि जब पब्लिक में बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे तो वो मेरे खिलाफ़ होंगे, और जब सियासत आ जाती है ना दीन में तो बस फिर अल्लाह ताला ही रहम करे, ये बहुत कुछ होता है। अब इन्होंने तो अपनी ख्यालों की एक जन्नत बनाई हुई थी और लग यही रहा था कि यही जन्नत में किसी को भेजने के और आने के और ले जाने के जिम्मेदार हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला रुकू के आखिर में बताते हैं कि आओ फिर मैं तुम्हें बताऊं होना क्या है। बला मन कसब सैयत व अहातत बिही खतीअतुहु, क्यों नहीं जिसने कमाया गुनाह और घिर लिया इसको इसके गुनाह ने, फौलाइक असहाबुन्नार, बस यही लोग दोजख के रहने वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो इसी में हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा रहेंगे इसी में। कहा ये बला का ताल्लुक किससे है? असल में ये पिछली आयत के लन तमस्सनन नार का जवाब है। अगर आप दोनों को जमा करें ना तो बात ऐसे बनती है, पीछे देखें आप आयत को, वकालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, अल्लाह ताला कह रहे हैं बला मन कसब सैयतम व अहातत बिही खतीअतुहु। बात वाज़े हो गई? ये जो बीच की बात थी ना, कुल से पहले आखिर तक, इसको आप ब्रैकेट में कर लें तो आपको पिछले कलाम का रब इसके साथ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें आग नहीं छुएगी और हम तो हमेशा आग में जाएंगे, अल्लाह ताला कह रहे नहीं, ये कैसे कह दिया आपने बला, बल्कि बात ये नहीं है, यानी जो आप समझे हैं वो हकीकत नहीं। हकीकत क्या है कि मन कसब सैयतन, जिसने बुराई को कमाया, सैया बुराइयों को कमाना, यहाँ कसब कहा गया, क्योंकि इंसान की नेकियाँ और उसके गुनाह उसका कसब होते हैं। जिस तरह नेकी करने के लिए मेहनत लगती है ना, इसी तरह गुनाह करने के लिए भी मेहनत लगती है। आप अल्लाह की रहमत से कुरान पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि सिंगर एक ही दिन में गाने लग जाता है? एक्टर्स जो होते हैं वो ऐसी फिल्में बना लेते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे पिक्चराइजेशन उनको करानी होती है कि अपनी जान का ख़तरा होता है, कई दफ़ा बीमार भी हो जाते हैं कि उनको एक ऐसा सीन देना होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बुराई में भी कसब कमाने में भी मेहनत होती है, ये पहला दर्जा होता है। ये आयत बहुत ज़्यादा गुनाहों में बंदे के फिसलने के तरीके को पेश करती है। पहला स्टेप क्या होता है कि मन कसब सैया, कोई भी शख्स बुरा काम करता है, गलत काम किया, ठीक है, अब क्या हुआ, कुरान क्या कहता है कि गुनाह हो सकता है, बट उसका अगला स्टेप दोबारा वो गुनाह नहीं होना चाहिए बल्कि नदामत, अनदमुत तौबा, गलती हो गई, पाँव फिसल गया, फ़ौरन खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ने लगे, मिट्टी झाड़े और कि अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये क्या कर दिया। ये तो है नेचुरल वे, लेकिन इसके बरक्स हो क्या कि मन कसब सही किया, बुराई करे व अहातत बिही खतीयतुहु, और अपनी बुराइयों में घिरा रहे या उसकी खताओं ने घेरा, ये जो चीज़ है ना वो क्या है कि गुनाह हुआ और शर्मिंदा ना होना। आप लिख सकते हैं अहातत बिही खतीयतुहु क्या है कि गुनाहों पे शर्मिंदा ना होना, शर्मिंदगी ना होना, इसका ये इंजाम है कि उलाइक असहाबुन्नार, कि अपने गुनाहों पे शर्मसार होने की बजाय ये कह देना कि हमने क्या किया और इससे क्या, और फिर जैसे पाँव फिसलता है ना तो फिर इंसान फिसलते फिसलते आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाता है। गुनाह भी इसी तरह होते हैं, पहला गुनाह बड़ा मुश्किल लगता है, जिसने पहली दफ़ा गुनाह किया होता है उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, वो इधर उधर पलक पलक के देख रहा होता है कि मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतना आदी हो जाता है कि फिर उसको इंजॉय करता है। कोई लड़की जो कभी किसी जगह नहीं निकली हो, अगर उसकी दोस्त उसको ले जाए, चलो आज स्कूल से सीधा होटल चलते हैं, चाय पीते हैं या कुछ भी करते हैं, हो सकता है चली जाए, माँ को कह दूँगी आज छुट्टी देर से हुई, लेकिन जो ही वहाँ जाके बैठे उसको फीलिंग आएगी कि मैंने गलत किया, फिर थोड़ी देर बाद देखे वहाँ एक लड़का भी आ गया, वो उस दोस्त ने बुला लिया उसको। वो दिन उसके लिए शायद ऐसा होगा कि अल्लाह करे आज यहाँ से बच के चली जाऊँ तो कभी इसका मुंह नहीं देखूंगी लड़की का। खौफ भी आएगा, इधर उधर देखने का एहसास होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा वहाँ से खैरियत से निकल जाए और कुछ ना हो, कुछ दिन बाद फिर यही मामला आए, तो आप सोचे वो जो पहले दिन की घबराहट थी अब वो थोड़ी तसल्ली में बदल गई, और तीसरी चौथी दफ़ा शायद वो खुद उसको इंजॉय कर रही होगी। ये है अहातत बिही खतियतु, इंसान जब गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होता तो वो उसके बदले में और काम करता है। एक शख्स है, वो सूद का काम करता है, फिर नमाज का भी पाबंद है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, लेकिन उसका ये एक गुना उसकी सारी नेकियों को खा जाएगा, ये दूसरा माना है इसका। अहातत बिही खतिया, तो पहला क्या है कि गुना करके शर्मिंदा ना होना, फिसलते हुए जाएंगे आप उसी में। दूसरा क्या है कि बहुत सारी नेकियां भी हैं, लेकिन कोई एक इतना बड़ा गुना है कि सारी नेकियों के ऊपर छा गया और सारी नेकियां ख़त्म हो गईं। इसी तरह मुफस्सरीन कहते हैं कि गुना की खाता कर लेने से मुराद क्या है कि गुना इस पर ऐसा गलबा कर लें, यानी इस तरीके से गलबा कर लें कि कोई जानिब ऐसी ना हो कि गुना का गलबा ना हो, हत्ता के दिल से ईमान और तस्दीक भी रुखसत हो जाए। एक असूल है उलमा की इस्तलाह में, अलमासी बरीदुल कुफर, के गुनाह तो कुफर की डाक होते हैं, यानी जो बंदा बार बार गुनाह करता है ना वो कुफर में चल पड़ता है। देखिए छोटा गुनाह है ना, बार बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा गुनाह बार बार करेंगे ना तो वो कुफर में बदल जाएगा। आप इसको इस तरह समझें, आप अपनी माँ की छोटी सी बात नहीं मानते, एक बार नहीं मानी, दो बार नहीं मानी, आदत हो गई, अब आप माँ की बात को तो कुछ समझते नहीं है। ऐसा ऐसा क्या होगा फिर, आप माँ की बड़ी भी नहीं मानेंगे, कहती रहे इनकी तो आदत है बोलने की, बड़ी बड़ी बातें भी इनकी नहीं मानेंगे। एक वक्त आएगा कि आप उसको अपनी माँ भी नहीं मानेंगे अपने अमल से। इसी तरह अल्लाह ताला की बात कोई भी छोटी नहीं। लोग कहते हैं छोटे गुनाह और बड़े गुनाह क्या होते हैं, कोई गुनाह छोटा नहीं है, इसलिए कि जिस ज़ात की नाफरमानी है वो ज़ात बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग असहाबन नार हुम फीहा खालिदून। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा था, यहूद का ख्याल क्या था कि लन यदखुल अल जन्ना इल्ला मन काना हूदियन, जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं नो, आओ अब तुम्हें बताता हूँ कि जन्नत में कौन जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, वामिलु सालेहात, और अमल सालेह करने वाले, ओलाई का साबुल जन्ना, ये हैं जन्नत वाले। कब तक, हुम फीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। ये वो बहिश्ती दरवाज़ा नहीं है कि जहाँ से गुजरने वालों को स्टिक्स के साथ कंट्रोल किया जाए। एक शख्स था जो इस चीज़ पे एतकाद नहीं रखता था, आप नाम से समझ गए होंगे, एक ऐसा दरवाज़ा लोगों ने बनाया हुआ है एक कब्र के ऊपर ही, साल में एक दफ़ा खुलता है, और उसके मौके पे कि जो वहाँ से एक दफ़ा गुजर जाएगा तो वो जन्नती है उनके ख्याल में। कॉल उनके कहते हैं इतना रश था कि पुलिस जो वहाँ से गुजर आई थी उसको डंडों से मार रही थी, आंसू गैस भी फेंकनी पड़ी, और उसने उस पर बड़ा प्यारा कमेंट दिया हुआ था कि ये दुनिया की बहिश्त का दरवाज़ा बना हुआ है, इधर से गुजरने वालों को तो डंडे पड़ते हैं, और असली जन्नत के दरवाज़ों में आने वालों को वसीकल्लज़ीन तक, सूरह ज़ुमर में आता है कि उनको प्यार से लिया जाएगा जो जन्नत की तरफ आ रहे हैं गिरोहों की सूरत में। अल्लाह तो अपने ततल्लका हुमुल मलाइका, सूरह रात में ग़ालिबन आता है कि फ़रिश्ते उनको हाथों हाथ लेंगे, मोस्ट वेलकम, कम कम, ये आज तुम्हारा दिन है, ये तो वो तुम्हारा दिन है जिसका तुम्हें वादा किए गए थे। तो कहा कि जन्नत में जाना है तो ना किसी का असली वतन, ना उसकी नस्बत, ईमान वाला, साबी, काफिर, फलां फलां, कुछ नहीं, जन्नत ईमान के साथ अमल सवाले पे है। अब यहाँ फिर देखिए कि अमल सवाले क्या है, कोई कहे अच्छा ये तो फिर बड़ी आसान बात है, ऐसा करते हैं कि अपनी मर्ज़ी का एक तसव्वुर बना लेते हैं अमल सवाले का, चैरिटी करते जाओ जन्नत में चले जाओगे, नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है समझने का कि जन्नत में जाना है तो पहली चीज़ ईमान है। ईमान क्या, वही बात बग़ैर किसी शक और मलाल के अल्लाह ताला को मानना, ठीक है। अमल सवाले यहाँ क्या है, कुरान मजीद की रोशनी में دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے عمل صالحہ۔ اپنی مرضی کا نہیں کہ کوئی آپ چیریٹی شو بنا لیں، یتیم خانہ کھول لیں، کوئی بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام کر لیں، خود کوئی سودی لین دین ترک نہ کریں، آپ کی زندگی میں حرام حلال کی فرق نہ ہو اور آپ دوسروں کو ڈونیشنز دیتے رہیں۔ دین پہ عمل کیا ہے؟ عمل صالح، جہاد، مجاہدہ، محنت کرو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر جنت ملے گی۔ ادروائز اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ کہے کہ میں اپنی پسند کا کوئی نیکی کا ایک سانچہ بنا لوں تو وہ اپنی خوش فہمیوں کی جنت میں تو داخل ہو جائے گا، لیکن اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ ایزیوم کر لیتے ہیں، دیکھنا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں جا کے ان کو سلیوٹ ماروں گا، میں ہائے کہوں گا، میں ان کی تعریف کروں گا، جو لیڈی بیٹھی ہوتی ہیں یا مین بیٹھے ہوتے ہیں امیگریشن پہ، میں انہیں کہوں گا کہ آپ کتنے نائس ہیں، کتنے ہیں، وہ کہیں گے اچھا بھائی باتیں چھوڑیں، پاسپورٹ تو دکھائیں، ویزا ہے کہ نہیں، آپ کی اس کو چھوڑو نہ، آؤ میں تمہیں ایک اور کہانی سناتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے تمہارے ملک میں آنے کا، مجھے یقین ہے تم مجھے آنے دو گے۔ کوئی بھی آنے دیتا؟ نہیں آنے دیتے۔ یعنی پچھلے سال ایک ایسا میں نے تجربہ کیا جس نے مجھے جنت کے جانے کا احساس کچھ اور شدت سے دلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب بون پاکستانی ہیں، اب ہمارا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے روکنا ہے پاکستان جانے سے۔ تو جب سے مجھے دوسری سٹیزن شپ ملی تو مجھے پتہ بھی تھا، اور میں تو یہ کام سب کرتی نہیں، قصہ مختصر یہ کہ مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب جب تم پاکستان جاؤ گی تو تمہیں ویزا لینا پڑے گا، وہ تمہیں امریکن پاسپورٹ پہ نہیں بھیجیں گے اندر۔ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امریکن پاسپورٹ پہ پاکستان میں نہیں آنے دیں گے؟ خیر قصہ مختصر، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، انہوں نے آرڈر کر دیا، ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، دو آپشن ہوتی ہیں، یا آپ ویزا لے لیں یا ایک اوورسیز والوں کو ایک آئی ڈی کارڈ ملتا ہے، میرا انہوں نے آرڈر کر دیا، آ بھی گیا، سب کچھ ہو گیا، انٹرنیٹ پہ اس کی سلیپ سب تھی، صرف یہ ہوا مطلب اس کا جو کارڈ ملنا تھا میل میں، میرے امریکہ سے نکلنے سے پہلے وہ نہیں آیا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں وہ نہیں تھا، لیکن باقی سارے ڈاکیومنٹیشن پاس تھے۔ پھر ہوتے ہوئے جیسے بھی جہاں سے ہو کے جس سٹی سے مجھے جانا تھا پاکستان، پوری لائن میں لگے ہوئے سب ہے، جب انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہ آپ کے اس پاکستان کا ہے ویزا، میں نے کہا ویزا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ ہی جو بھی بات کر رہے تھے، قصہ مختصر مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے۔ ان کو پورا یقین تھا میں پاکستانی ہوں، ان کو پورا یقین تھا میں کوئی تحریف کاری کے لیے نہیں آئی، میری واپسی کی بھی ٹکٹ تھی ایک یا دو ویک کی بعد، ان کو پتہ تھا میں نے واپس آ جانا ہے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں گھسنے دیا، میں وہیں پیدا ہوئی اور میں بالکل ایک دو گھنٹے کے فاصلے پہ کھڑی تھی، میں نے کہا آپ مجھے نہیں جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاکستانی پاسپورٹ ہو تو امریکہ میں آپ کو گھسنے دیں گے؟ بات تو سمجھ آ گئی۔ میں کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جائیں آپ کل جا کے ویزا لگوائیں، یہاں جس ملک میں وہاں جا کے پاکستان کا ویزا لگوائیں اور بک ڈاکیومنٹیشن یا پھر امریکہ سے اپنا کارڈ منگائیں۔ اور واقعی اگلا پورا دن لگا ہمارا، امبیسی میں گئے، کتنے پیسے لگے، اور پھر میرا ارجنٹ ویزا نکلا اور اگلے ہی دن کی پھر رات فلائٹ سے گئے، اور صرف 15 دن کی مجھے اجازت ملی۔ مجھے تو اس دن ہکا پڑے کہ اگر اللہ نے کرے میں نے 16 دن رہنا ہو تو میں اس ملک میں اب نہیں رہ سکتی، لیکن رولز از رولز ریگولیشن۔ وہ آدمی بھی بھیجنا چاہ رہا تھا، اپنے افسروں سے باتیں کر رہا کبھی کہ ادھر چلے جائیں یہ کر لے، پھر کہیں گا کہ اصل وجہ کہ ہم کیوں نہیں آپ کو بھیج رہے، کہ اگر ہم آپ کو اس صورت میں چڑھا دیتے ہیں اور وہاں آپ کا کچھ مسئلہ ہے تو ہماری ایئر لائن کو $5,000 غالباً پینلٹی دینی پڑے گی آپ کی، اس لیے ہم نہیں بھیج رہے۔ تو دنیا کے رولز ہیں، اور کیا ایک چھوٹی سی بات ہے، یہاں تو کوئی ہنس کے نہیں ٹالتا۔ اگلے دن جب میں ویزے کے ساتھ گئی اور امیگریشن پہ ایک لڑکی تھی رات کا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اگر میں کل آ جاتی اس ویزے کے بغیر تو آپ مجھے آنے دیتی؟ اور وہ بیچاری اتنی نیند میں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا اس نے مجھے جانے دینا لیکن بٹھانے والوں نے مجھے نہیں بیٹھنے دیا۔ تو بس یہیں سے سوچیں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اس سے آخرت کو سوچیں۔ یہاں تو 15 دن کا ویزا ملا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم فیھا خالدون، جہاں ہمیشہ جانا ہے، کیا پھر تمہیں وہاں کا کارڈ نہیں چاہیے؟ تو سارے سبق کا خلاصہ اب آپ دیکھ لیجئے، کیا سمجھے؟ اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پورے سبق کو بس ایک سینٹینس میں پھرو دیں، لمبی کہانی دوبارہ نہیں، پورے سبق کا ایک خلاصہ۔ اصل چیز یہ کہ آپ فالو کریں، اگر جو اللہ نے دین دیا اس کو ہم فالو نہیں کریں گے نا، آپ جتنی بڑی ڈگریاں بھی لے کے چلے جائیں گے نا، کچھ لوگ بڑے خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھو کیا فرق پڑتا ہے، ہم یہاں اتنے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں تو کیا ہمیں جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا؟ تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ ایک شخص ہے ساری زندگی امریکہ میں رہا. اب تو یہ مثال بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہوگی, میں نے پہلے کئی دفعہ دی لیکن اتنی اچھی نہیں دے سکوں گی جتنی انشاءاللہ آج دوں گی. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ساری زندگی امریکہ میں رہے, ٹھیک ہے, اس نے کتنا پڑھا, اس نے کتنا لکھا, اس نے کیا کچھ کیا, مثال ہے, وہاں سے اٹھ کے ناروے میں آ جائیں, آپ کی روڈ پہ لگا ہوا ایک سائن بھی پڑھ سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ ٹیکسی کیسے لینی ہے, ہوٹل کو کیا کہتے ہیں, ہیں کچھ نہیں بتا سکتے نا. کہاں گیا وہ سارا علم جو اس نے امریکہ سے لیا؟ صرف دنیا کے ایک خطے سے اٹھ کے آپ دوسرے میں آئے, آپ کا پچھلا سارا علم انویلڈ ہو گیا. تو سوچئے کہ اس دنیا سے نکل کر جب قبر میں جائیں گے تو کیا وہاں ہماری یہ ساری ڈگریاں کام آئیں گی؟ اس لیے کچھ وہاں کے لیے بھی لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, دلوں کی سختی سے بچائے, دنیا کی محبت اور وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کے اندر کلاٹس ڈالی ہوئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے, تحریفات سے بچائے, اور اس طریقے سے ہم دین کو لوگوں تک بھی پہنچائے کہ جو حقیقت میں اللہ کی مراد ہے. یہ بڑی خطرناک جگہ ہے, بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے پڑھانا کرسی پہ بیٹھنے کا, میں کہتی ہوں یہ جگہ اتنی خطرناک ہے ایسے لگتا ہے کہ بندہ پل صراط پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی, آپ سب پڑھنے میں ہلکی سی چیز مس انڈرسٹوڈ کریں اور آگے بتا دیں تو آپ دیکھیں کتنے گنا ملٹیپلائی ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پہ جمع دے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ